You, what is Advaita Gyan par Tattva?
It is when.
More louder.
It is that this material world and all the energies of Krishna are non-different from Krishna. That Krishna is simultaneously different and non-different from his manifestation.
Bollo ye material na ekhane jora jagat. জড় শক্তি এসব কৃষ্ণের থেকে অপৃথক পৃথক নয় আর কৃষ্ণের এর উপরেই সমস্ত সত্তার সমস্ত সত্তা নির্ভর করে
নট ইন ফুল সামথিং ওকে আচার্য জি কিধার হ্যাঁ আচার্য কিধার গে
অজয়জি কাহা
कल जो हमने बतलाया वदन की तत्व दस तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान अद्वै ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं
आपने बताया उसके अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण हैं
नहीं जो आप ठीक समझते हैं वो बतलाइए हम जो कहा वो गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है इसलिए आप जो समझते हैं वो बतलाइए
मैं आपकी चौथी पीढ़ी हूँ इसलिए
बोलिए
आप गलत नहीं बोल सकते मैं गलत
बोलिए बोलिए
जहाँ पर द्वय का भाव न हो न द्वयम इति अद्वयम तो अद्वय वह ब्रह्म है वेदांत के अनुसार जो निर्विकार निर्विकल्पक जो ब्रह्म जिसको लोग मानते हैं और जो क्रम आपने बताया वो बहुत अच्छा है उसी क्रम से
हमने जो बतलाया या आपने जो समझा है वो बतलाइए हमको
जो आपने बताया मैंने वही समझा
हाँ बतलाइए
तो जब तत्वविद लोग हैं उसको सूक्ष्म रूप से निर्विकार रूप से देखते हैं
पहले अद्वैत ज्ञान को बतलाइए ये किसको कहते हैं
अद्वैत ज्ञान यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते
कल हमने जो कहा था उसको अच्छी तरह से बड़े बड़े विद्वान इसमें उनका सिर घूम जाता है व्हाट आई टोल्ड Oh, Shyamrani, today you will have to speak about Nar Charitra.
Advaita Gyan Tattva, he is the non-dual absolute truth. Therefore, even though the absolute truth is one, then he is realized in different aspects by different persons.
How he is one?
Because now
we see so many incarnations, Ram, Lakshman, all others, we see that transcendental world, we see so many jiv, we see all this world so much trees, creepers, everything. How he is one?
Just like the moon is always full, but sometimes you see as half moon, quarter moon.
What I told you,
you could not understand.
Because nothing is separate from him. That Brahma, that Paramatma, that Bhagavan is,
okay.
is only him.
But how he is one? Absolute truth.
Just
can you?
Srila Gurudev discussed last night the verse. Vedanti tat tattva vidas tattvam yaj gyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabhyate. Bhagavan is one, but seen from different angles, he may look like one thing or another. Srila Gurudev gave the example of a mountain. When a mountain is seen from very far away, it may look like a cloud. And then when you get close, you can see that it's some green thing. But if you go exactly on the mountain, then you see that there's so many varieties of trees and insects and plants and shrubs. So similarly, Bhagavan is one. But if seen from very far away, he seems like the impersonal Brahman. When seen from closer, he seems like Paramatma in the heart of every living entity, the size of a thumb. And when seen fully, then one can understand that he's Bhagavan and that Paramatma is not independent of him, the Brahman is not independent of him, and as it states in the Brahma Samhita, within that Brahma Jyoti, there's so many infinite universes. So one might say that the energies of God are separate. One might say that his limbs of his body are separate things, and one might say that his expansions are separate things. But there's so much reference in the Shastra that all of his energies are subordinate to him and within him and emanate from him, and his limbs of his bodies, Angani Yasya Sakalendriya Vritti Manti, that is, all of his limbs can act fully, independently. For example, he can see when someone offers prasadam, and so he can accept the prasadam with his eyes. All of his limbs are absolute and non-different from him. All of his energies, he has three energies, material energy, spiritual energy, and marginal energy, and they're all within him. And his supreme energy, paratattva, that's also non-different from him, just like I have energy, and I'm doing so many things with my energy, but it's non-different from me. So he has his supreme parashakti, and that parashakti is also divided into antaranga shakti, tatastha shakti, and bahiranga shakti, that is this material world, all the living entities, and the spiritual world, which is divided into the sandini potency, and the Ladini potency and the Sat potency, and all these energies are within Krishna and non-different from him. Also we see in the Brahma Samhita, Ramadi Murti Sukalani Amenatistan, that is all the incarnations, Ram, Nrisimha, Varaha, they're all emanating from Krishna, they're all within Krishna, they're not independent from Krishna. So in this way, one may see from different angles that there's so many energies, so many incarnations, so many aspects of the material world, but they're all subordinate to Krishna and within Krishna. Therefore, he's the one without a second absolute truth.
Very good. Very good. Vasatthika. द्वय और द्वय नौ द्वय जो दो नहीं है तात्पर्य क्या जो परतत्व है वह दो नहीं है एक ही है एब्सोल्यूट रूथ ओनली वन नो सेकंड न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तमस तत् समस्य अधिकृत्य परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभावकी ज्ञान बल क्रिया व्हाट मीनिंग न तस्य कर्जम करणं च विद्यते वो जो ब्रह्म है ही हैज नो मॉर्टल इंद्रिय
सेंसेस
सो वी कैनॉट सी हिज उसके हम इंद्रियों को नहीं देख सकते कान नहीं है सुनता है आंख नहीं है देखता है
पैर नहीं है चलते हैं
पैर नहीं है चलता है हाथ नहीं है पकड़ता है और न तत्समस्य अप्राकृत इंद्रिय है उसके न तो कोई बराबर है न तो अधिक है न पराशक्ति विविधैव श्रूयते. भगवान की एक ख्लादिनी पराशक्ति है जिसको स्वभाव की कहा जाता है. यही शक्ति अपराकृत जितने जगत हैं सबको प्रकट करती है. वही बदल करके परिणाम उसका हो करके वो सब वैकुंठ और गोलोक वृंदावन सब धाम बने हैं. भगवान के शरीर इत्यादि जितने हैं ये बल से, बल शक्ति है उससे, अर्थात बलदेव प्रभु जी के द्वारा बल शक्ति के अधिष्ठात्री हैं. जितने कृष्ण की बंसी, मुकुट और सब ऑर्गन सब सब वैष्णव वहाँ पर नंद बाबा कृष्ण इत्यादि के जो शरीर देखे जाते हैं वही कृष्ण ही बलदेव के रूप में परिणित होकर के इन सबको प्रकट करते हैं. राम इत्यादि जो हैं इनसे भिन्न नहीं है कृष्ण से. रामादि मूर्ति सु कहा उसने. कृष्ण ही राम नृसिंह इत्यादि के रूपों में समय समय पर आते हैं और जगत में वो ट्रांसेंडेंटल जगत में जो गोप गोपी गो गायें और सब जो देखी जाती हैं वही कृष्ण की शक्ति से वो सब प्रकटित है. इसलिए कृष्ण से भिन्न नहीं है. और ये सारे जो जीव वैकुंठ जगत में यहाँ पर हैं ये सब इतने हैं और उनकी तटस्था शक्ति परिणत होकर ये हुई है. कृष्ण का विकार नहीं है, कृष्ण से नहीं. जब तटस्था शक्ति कृष्ण से मिलती है और कृष्ण अपनी सारी शक्तियों को स्तब्ध करके केवल तटस्था शक्ति से रहते हैं तो उनसे जीव प्रकटित होते हैं. इसलिए इनको विभिन्नांश कहा जाता है. किसका? कृष्ण का ही. इसलिए ये भी अलग नहीं है. और ये जो जड़ जगत देखते हैं जिसका ध्वंस हो जाता है, वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी इस सब के शरीर जो है ये कृष्ण की माया शक्ति से प्रकटित है. इनको भी अलग मत समझो. इसलिए इन सब की जितना कहा कृष्ण से पृथक इनकी सत्ता नहीं है. कृष्ण की सत्ता पर ही बलदेव जी की सत्ता, राम जी की सत्ता, जीवों की सत्ता, ये जड़ जगत की सत्ता इसमें होती है. इसलिए ये अलग नहीं है. ये तो हुआ परतत्व अद्वैय ज्ञान. और ब्रह्मरूप में कैसे देखते हैं निर्विशेष रूप में, उसका तो कोई रूप नहीं है किंतु है. वो है क्या? कृष्ण की चरण की अंगुलियों की नख की ज्योति है. अंडरस्टैंड? उनके चरण कमलों की नख की ये ज्योति है ब्रह्म. सूर्य है, सूर्य से ज्योति निकलती है. सूर्य का रूप है, गुण है, क्रिया है, सब कुछ है किंतु ज्योति जो उनसे निकलती है उसका कोई रूप नहीं है किंतु क्रिया है. उसे धूप लगेगी, सूर्य नहीं रहने से ठंड लगेगी, सूर्य नहीं रहने से अंधकार हो जाएगा, ये सब क्रिया उसमें है. उसी तरह से ये कृष्ण ही मूल सत्तावान है. उन्हीं की सत्ता से सब कुछ होता है. कृष्ण नहीं रहेंगे उनकी कोई भी शक्ति नहीं रहे. तो कृष्ण जिस समय में बहुत दूर से ज्ञान रूप में देखे जाते हैं तो भगवान के चरण की नख चंद्रिका ये उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है. इसलिए लोग कहते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए उसको कहा गया. और जो परमात्मा है जो जीवों के हृदय में, प्रत्येक जीवों के हृदय में साक्षी रूप से है, अंगुष्ठ परिमाण है. ब्रह्म में केवल आंशिक चित है, आंशिक चित. परमात्मा में चित भी है
सत भी
आंशिक और
सत भी है
सत भी है माने सत्ता भी है अंगुष्ठ परिमाण में किंतु आनंद नहीं है यह है परमात्मा वो हम लोगों के साक्षी कुछ है वो सब
उसकी क्रिया भी नहीं है परमात्मा परमात्मा की कुछ क्रिया है
क्रिया क्रिया है साक्षी रूप में देखते हैं
देख रहे हैं
उसके फलों का नियंत्रण करते हैं और आनंद जहाँ है भगवान में कृष्णस्तु भगवान वो आनंद ही है आनंदम ब्रह्म आनंदमय मयो ब्रह्म आनंद भी है आनंदमय भी है शंकराचार्य आनंदमय को डाइजेस्ट नहीं कर सके ये कैसे आनंदमय हो गए आनंद है आनंदमय मैंने तो एक कोई व्यक्ति हो जाता है तो व्यक्ति तो है नहीं इसलिए उन्होंने कहा जो व्यास देव जी ने जो ये कहा है आनंदमय ये ठीक नहीं है इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं कि अपने गुरु को भ्रांत कहता है भूल करते हैं इसलिए शंकराचार्य का व्यास को गुरु मानना यह बेकार की बात है इसलिए भक्ति से ही भगवान को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है उनके सेवकों को देखा जा सकता है उनके धाम को देखा जा सकता है उनके परिकर को देखा जा सकता है यह है अद्वैय ज्ञान अंडरस्टैंड समथिंग
हिंदी भाषा की बोलियो
वेरी टेक्निकल गुरु हां वेरी टेक्निकल
आपको भी समझ लेना होगा आपको बतलाना होगा आप टीचर हैं विशेष करके आपके लिए मैंने कहा कि आप समझेंगे इसको
There's a verse, Natasya Karam Karanam Chavidite. That means, even though he has no ears, he hears everything. Even though he has no eyes, he sees everything. Even though he has no legs, he moves here and there. Even though he has no hands, he accepts the offering of the devotee. That means the Absolute Truth has been described to have transcendental senses, transcendental everything. Therefore, we cannot see him with these material eyes. But he is always endowed with his parasya shakti vividevya suryate. But he is always endowed with his shakti, with his own energy. That energy is called swabhavik, or natural. That energy has three functions, gyan, bal, and kriya. Like Krishna has Satchidananda, then his energy also has these three works. Therefore, the Absolute Truth is one, but he is realized in three aspects. Those who realize only the chit aspect of Bhagavan, they realize his nirvishesh form, Brahma Jyoti, which Gurudev says is nothing else but the rays coming from the toenails of Sri Krishna. Then the yogis, they realize sat and chit in the form of Paramatma, who's the shape of a thumb.
Not complete form.
But this is not complete. This is only Anksik Roop. And finally, the devotees realize sat, chit, and Ananda. Therefore, Vyasadeva, he described that inside Krishna, he is Ananda, he is ecstasy, but he is also Anandamoy, he is also full of ecstasy. But Mayavadis, headed by Sankacharya, they cannot accept that the Absolute Truth is full of ecstasy, because if he is full of ecstasy, that means he is a person. Therefore, Sankacharya, he could not digest this, so finally he wrote that Vyasadeva made a mistake. He said wrong thing. But even though Sankacharya accepted Vyasadeva as his guru, then how you can say guru is good? He is my guru, but he made a mistake. Therefore, their guru worship of guru is like that.
God Pramana.
One thing more. आप लोग भी समझिए. मायावादी लोग और द्वैतवादी लोग कहते हैं. जीव ब्रह्म है और संसार का जो कुछ सर्वम खलु इदम
ब्रह्म
ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म।
तो ये जब ब्रह्म है सब कुछ तो हमारे जीव गोस्वामी उनसे पूछते हैं भाई ब्रह्म तो एक ही है और वो सत्य ज्ञानम अनंतम भी है, तो वो जीव और जगत कैसे ये हुआ?
एक से अधिक हो गया तो
यदि कहो ये माया ने ब्रह्म को आच्छादित कर दिया उससे ये हुआ, तो जीव गोस्वामी पूछते हैं ये माया ने ब्रह्म को पकड़ा या जीव को पकड़ा? समझ रहे हैं? यदि ब्रह्म को कहो तो वो सत्य ज्ञानम अनंत है, उसको तो पकड़ नहीं सकता, और यदि जीव को कहो तो जीव कहाँ से आया, आया कहाँ से? तो माया के वजह, माया क्या है, ये द्वितीय कहाँ से आ गया? भगवान तो अद्वितीय हैं, ये माया कहाँ से आ गई? ये भगवान को पकड़ दिया, जो भगवान से भी बलवान है, जो भगवान को भी आच्छादित कर देती। तुम यदि कहो हाँ तो भी, और यदि ना तो भी तुम्हारा मायावाद। तुम उन्होंने कहा जी भगवान प्रतिबिंबित हुए, प्रतिबिंब कहते हैं, उन्होंने इसको भी काटा, तो प्रतिबिंब से छोड़ करके फिर दूसरी तरफ एक विषय पर अद्वैतवादी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि वो सिद्धांत ही गलत है वेद के विरुद्ध।
अंत में अनिर्वचनीय मान लेते हैं, अंत में अनिर्वचनीय मानते हैं,
अंत में अनिर्वचनीय
कि माया अलग से अस्तित्व,
वही बौद्धों का लिया, बौद्धों से निकला है ना, तो मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, कुछ नहीं है, सब झूठा है, भगवान भी झूठा है, ब्रह्म भी झूठा है, जगत भी झूठा है, तो तुम कह रहे हैं इसलिए तुम सबसे झूठा है।
कुछ लोग बोलते हैं जो हमारे आचार्य लोग ग्रंथ लिखे हैं वो शास्त्र नहीं है, उसको लिटरेचर कहते हैं बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु जैसे उसको भी बता के बोलते हैं इसको शास्त्र नहीं बोलते, इसको लिटरेचर बोलते हैं, और बोलते हैं कि शास्त्र जो पुराने शास्त्र है उसको ज्यादा महत्व देना है, बाद में जो आए लेटेस्ट जो शास्त्र बाद में आए अगर वो शास्त्र पुराने शास्त्रों से अगर टैली नहीं हो रहे तो बोलते हैं कि पुराने शास्त्रों को ज्यादा महत्व देना है, तो आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए।
तो उन्होंने पूछे शास्त्र का डेफिनेशन क्या है, लिटरल
का डेफिनेशन क्या कर रही है, हमको तो बतला।
वो कह रही है कुछ कुछ लोग का कहना है कि हमारे ये सब गुरुवर ग्रंथ लिखा है ये शास्त्र नहीं लिटरेचर है, ये शास्त्र नहीं है ये लिटरेचर है, जैसे भक्त सिंधु बिंदु बोलता है ये जब लिटरेचर है पहले वाले शास्त्र टैली नहीं करता है तो हमें शास्त्र का महत्व देना चाहिए, इस लिटरेचर महत्व नहीं देना चाहिए, लोग कह कुछ कुछ लोग ऐसे कहते हैं।
क्या करना चाहिए
यदि शास्त्र के साथ इसका सामंजस्य ठीक नहीं बैठता है, शास्त्र का महत्व दो या भक्त सिंधु बिंदु इसका महत्व मत दो।
तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं
ना, वो शास्त्र नहीं लिटरेचर है।
यदि शास्त्र का विरोधी है जैसे भागवत है तब तो वो शास्त्र नहीं है, लिटरेचर ही हुआ, किंतु हमारे गोस्वामियों ने जो कुछ लिखा वो शास्त्र से ही लेकर के लिखा, उसी की स्थापना की है, इसलिए ये भी शास्त्र है, ये लिटरेचर नहीं है। वेद है, आदि वेद ही है, किंतु वेद एक खारा समुद्र की भांति है, उस सब कोई पानी नहीं पी सकता, और उसी वेद को फिल्टर्ड करके ये भागवत बना, दूध है ना, दूध से मक्खन बनाया उसको, और मक्खन में से घी निकलेगा, घी से दूसरा कुछ नहीं होगा ना? तो वैसे ही भागवत जो है ये मक्खन से भी घी निकला है दूध से, और खारा समुद्र को फिल्टर्ड करके मीठा पानी बनाया है जो सबके यूज में आएगा, सभी लोग पान करेंगे और जीवित रहेंगे, इसलिए ये सब जो ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी के, वो भागवत का भी सार लेकर के तब लिखा है। जैसे अन्नाभिलाषिता शून्यम भागवत में भी नहीं है, किंतु भागवत का ही सपोर्टर है ये, इसलिए ये भी सब शास्त्र है।
अभी भी ब्राह्मण लोग ये बोलते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता।
क्या
अभी भी ब्राह्मण लोग ये बोलते हैं?
बोलते ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, शूद्र शूद्र होता है, शूद्र कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता।
वो लोग गलत कहते हैं। नारद जी क्या थे?
शूद्र।
क्या थे? दासी के पुत्र थे। व्यास जी क्या थे?
फिशरमैन।
अनुलोम विलोम से पैदा हुए, पराशर ऋषि, और कहा वो
धीवर की लड़की।
तो ये कौन जाती हैं?
अगस्त ऋषि कलश से पैदा हुए, गौतम ऋषि हिरण से पैदा हुए, तो क्या करें?
और वशिष्ठ जी
वाल्मीकि।
तो ये सब पहले ही गुण कर्म विभाग सह
चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह
गुण और कर्म से बने। रावण ब्राह्मण था, कर्म से उसको राक्षस माना गया। प्रहलाद महाराज जी राक्षस कुंड में पैदा हुए, अपने कर्मों से ब्राह्मणों के भी उपास्य बन गए।
वही नहीं है कृष्ण।
अच्छा रामचंद्र जी कौन से जाति के हैं?
क्षत्रिय कुल में आए।
क्षत्रिय कुल में, तो वो ब्राह्मण लोग उसका जूठा क्यों खाते हैं?
कृष्ण वैश्य कुल में आए।
और कृष्ण तो वैश्य कुल में आए।
हनुमान जी
ये कौन सा जाति?
हनुमान जी जानवर कुल में आए।
इसलिए गुण कर्म विभाग। और एक श्लोक है जस्य ज
जस्य लक्षणं पुंसम
तद वर्ण व्यंजकम जदा नत्रापि
दृश्यते तत्र नैव विनिर्दिशेत।
यदि ब्राह्मण के गुण जैसे वो एक बच्चा गया वेश्या का लड़का एक ऋषि के पास में, नाम
गौतम
गौतम गौतम जबाल
जबाल जवाली जवाली की लड़का गया।
जवाली एक नाम की वेश्या थी, उसका पुत्र जबाला
गौतम ऋषि के पास गया था।
गौतम ऋषि के पास में वेद पढ़ने के लिए गया। उन्हें कहा जी बेटा तुम कौन सा जाति का है,
गोत्र क्या है,
तुम्हारा गोत्र क्या है?
ब्राह्मण।
तो कहा जी हमको तो पता नहीं है।
ब्राह्मण
तो जाओ माँ से पूछाओ। तो मैया को पूछा जी हम युवावस्था में, मैं व्यभिचारिणी थी वेश्या, किसे पैदा हुए हो ये मैं नहीं जानती। तो वो गया गुरु के पास में, कहा जी हमारी माता जी युवावस्था में वेश्या थी, किससे मैं पैदा हुआ हूँ वो जानती नहीं है, इसलिए मैं किसका पुत्र हूँ मैं नहीं जानता। ओ तुमने सत्य बात कहा है, इसलिए तुम ब्राह्मण है, तुमको हम वेद पढ़ाएं।
सत्य काम उसका नाम था, सत्य काम
सत्यकाम जाबाला, उसको पढ़ाया, उसको ब्राह्मण माना।
गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।
What?
My friend Steve.
और मित्र और नाम स्टीव और हरिनाम करे।
Oh, very good. My blessings. आपके बेटे अब बड़े बड़े हो गए हैं,
Could have said the same? Oh. If you're not born in a Brahmin caste, this is all